हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 14, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य रोग एवं योग के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले दो क्लास में हमने स्वास्थ्य से तात्पर्य, स्वास्थ्य का महत्व, संतुलित भोजन एवं उसके अवयव, त्वरित भोजन, सिंथेटिक फूड पेय का प्रभाव, कुपोषण, रोग तथा संक्रामक रोग जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ चुके थे और अब हम असंक्रामक रोग, पतंजलि योग का स्वास्थ्य पर प्रभाव, नागार्जुन का जीवन परिचय जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि स्वास्थ्य शब्द का क्या मतलब होता है, कोई व्यक्ति कैसे स्वस्थ है या हम कैसे जान पाएंगे। हमने एक कहावत से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, पहला सुख निरोगी काया। क्या आपको इसका मतलब याद है? उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य का महत्व क्या है या हमारे लिए जरूरी क्यों है, कोई भी व्यक्ति कितना ज़्यादा स्वस्थ है या हम कैसे पता कर सकते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ होने का मतलब है कि हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें। जैसे हम दौड़ सकते हैं तो हम कितना ज़्यादा दौड़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं तो हम कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं, लिखने की, पढ़ने की, दौड़ने की, खेलने की, कूदने की, समझने की, सोचने की, इन सभी का उपयोग हम जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना ही हम खुद को स्वस्थ महसूस कर पाएंगे, या फिर ऐसा कहें कि स्वस्थ होने के बाद ही हम अपनी शक्तियों का और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं। फिर मैंने यह भी बताया था कि स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो व्यक्ति अस्वस्थ होगा वो कैसे राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाएगा, वह तो राष्ट्र पे बोझ हो जाएगा। तभी तो हमारे देश में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं बनी हुई है जिनका उपयोग कर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, ताकि वह अपने देश पर बोझ ना बने, वह अपने देश के लिए काम कर सके। फिर हमने संतुलित भोजन के बारे में पढ़ा था और जो पोषक तत्व हैं हमने उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की थी। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल तथा खनिज लवण, यह सब पोषक तत्व हैं। हमने संतुलित भोजन के घटक के बारे में भी पढ़ा था जो चार होते हैं, ऊर्जा देने वाले घटक, शरीर निर्माण करने वाले घटक, रक्षा करने वाले घटक और जल व रुक्षांश। ऊर्जा देने वाले घटक कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं, शरीर निर्माण करने वाले घटक प्रोटीन है, रक्षा करने वाले घटक विटामिन और खनिज लवण है तथा जल व रुक्षांश रसदार भोजन से प्राप्त होते हैं। हमने सारणी एक में यह भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज किन किन खाद्य पदार्थों से हमें मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, इडली, रोटी, पूरी, कसावा, सामान्य शक्कर, शहद, गुड़, डबल रोटी, भूमिगत कंद जैसे आलू, अरबी, शक्करकंद, मीठे रसीले फल से प्राप्त होता है। वसा मक्खन, मूंगफली, घी, वनस्पति तेल, गिरी और मांस से प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, क्या आपको याद है? प्रोटीन प्राप्त होता है अंडे, मांस, मछली, दूध, पनीर, चीज, मूंगफली, दालें, मटर और सोयाबीन से। फिर हमने खनिज के बारे में भी पढ़ा था, खनिज कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन, और यह सब हमें प्राप्त कैसे होते हैं? कैल्शियम हमें दूध, दही, हरी सब्जियां, रागी से प्राप्त होता है। लोहा हमें कलेजी, अंडा, मांस, मटर, सूखे मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ से प्राप्त होता है। फास्फोरस दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और सल्फर अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा आयोडीन समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ नमक भी आयोडाइज्ड होते हैं जिससे हमें आयोडीन की मात्रा मिलती है। फिर हमने विटामिन के बारे में एक विस्तृत जानकारी हासिल की थी कि कौन कौन से विटामिन होते हैं और उनके स्रोत क्या होते हैं, उनकी कमी की वजह से कौन से मुख्य रोग होते हैं तथा उस रोग में हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तब मैंने बताया था आपको कि विटामिन ए की वजह से रतौंधी होती है, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी होती है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, विटामिन ई की वजह से बंध्यता व पक्षाघात होता है तथा विटामिन के की वजह से हेमरेज होता है। यह प्रश्न अनेक बार आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें जरूर याद रखें। फिर हमने फास्ट फूड और सिंथेटिक फूड पेय का प्रभाव भी पढ़ा था, जहां मैंने आपको बताया था कि त्वरित भोजन अर्थात फास्ट फूड तथा सिंथेटिक फूड पेय हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ये हानिकारक क्यों है? ये हानिकारक इसलिए हैं क्योंकि जो भी तत्व पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं वह इन सब में सामान्य रूप से मौजूद नहीं होते हैं, या तो वो इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। जैसे सिंथेटिक फूड पेयों में शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। उसके बाद फिर हमने कुपोषण के बारे में पढ़ा था, कुपोषण क्या होता है और ये किन कारणों से होता है। तब मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के संतुलित विकास के लिए भोजन में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं अन्य सूक्ष्म तत्वों का होना आवश्यक है। अगर ये संतुलित रूप से नहीं होते हैं हमारे शरीर में या फिर हमारे भोजन में, तो हमारा शरीर संतुलित विकास नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। फिर हमने कुपोषण के कारणों पर चर्चा भी की थी, जैसे गरीबी व अज्ञानता, बेरोजगारी एवं बढ़ती आबादी, खाद्यान्नों का अभाव एवं खाद्य सामग्री में मिलावट, भोजन संबंधी हमारी आदतें, मानसिक वेदना तथा चिंता और मिथ्या धारणाएं, यह सब कुपोषण के कारण हो सकते हैं। फिर हमने कुपोषण की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे भी पढ़ा था, जैसे प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन से रोग होते हैं, क्या आपको याद है? मैंने यहाँ पर क्वासी योर कोर और फिर मैरेशमस के बारे में आपको बताया था। उसके बाद मैंने यह भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक बीमारी होती है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज की कमी से चक्कर आना, थकान व ऊर्जा में कमी आदि लक्षण नजर आते हैं। उसके बाद हमने खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग के बारे में भी पढ़ा था, जहां मैंने कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, गलकंड रोग जैसे विषयों पर चर्चा की थी। फिर हमने विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ा। इन सब के पढ़ने के बाद हमने रोग क्या होता है इसकी जानकारी भी हासिल की। उसके बाद रोग की उत्पत्ति के कारक को पढ़ा, जैसे जैविक कारक, रासायनिक कारक, पोषण कारक, यांत्रिक कारक, भौतिक कारक और पदार्थों की कमी या अधिकता, इन सब की वजह से रोग होते हैं, हमने इन सब को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यह भी चर्चा किया था कि संक्रामक रोग क्या होता है और यह किन किन प्रकार से हो सकता है, जैसे वायरस जनित रोग, जहां हमने चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, एड्स, डेंगू जैसे बीमारियों के बारे में पढ़ा था। फिर जीवाणु जनित रोग को भी पढ़ा था, जहां हमने तपेदिक या क्षय रोग के बारे में पढ़ा, जिसे सामान्य रूप से टीबी कहते हैं। उसके बाद डिप्थीरिया के बारे में पढ़ा था, पीलिया के बारे में पढ़ा और कुष्ठ रोग जैसे बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा है। और सबसे अंत में हमने प्रोटोजोआ जनित रोग को पढ़ा था, जो अमीबायसिस तथा मलेरिया है। अब हम असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने किताब के पेज नंबर 177 को देखिए। असंक्रामक रोग, जिसे इंग्लिश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। यह केवल रोगी तक सीमित रहने वाले रोग हैं। बहुत ही आसान है इसे समझना। संक्रामक रोग के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होते हैं, उसी तरह असंक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। और असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं जैसे मधुमेह, कैंसर। अब इन दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। मधुमेह, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, इसे शुगर या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। यह अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त स्त्राव न होने के कारण होता है, जिससे रक्त व मूत्र में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। इसमें अधिकतर कमजोरी, थकान लगती है। उपचार हेतु बाह्य स्रोत से इंसुलिन दिए जाते हैं। अब हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। यह रोग अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे धूम्रपान, रसायन, कार्सिनोजेनिक कारक जैसे एक्सरे, यूवी विकिरण आदि। इसमें कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि व विभाजन होता है। बाद में कोशिकाएं ट्यूमर का निर्माण करती हैं, जिसे कैंसर कहते हैं। इसके लक्षण हैं शरीर के वजन में कमी आना, शरीर में गांठ होना, घाव न भरना, सिर दर्द, पेट दर्द, वृषण कोश, स्तन ग्रंथियों की आकृति में परिवर्तन, मूत्र में रक्त निकलना। इसका उपचार, रोगग्रस्त भाग को शल्य क्रिया द्वारा निकाला जाता है। कैंसर कोशिकाओं को विकिरण तथा दवाइयों द्वारा नष्ट करके एंटीबायोटिक्स, अल्केलॉइड्स के प्रयोग से तथा रेडियोथेरेपी द्वारा शल्य क्रिया या अस्थि मज्जा का प्रत्यार्पण करके औषधियां विनक्रिस्टीन तथा विनब्लास्टीन। तो इस प्रकार से हमने संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा, जहां हमने मधुमेह और कैंसर को समझा। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। यह एक बार होने के बाद बहुत ही मुश्किल से ठीक हो पाती है। धूम्रपान, शराब जैसे मादक पदार्थों से कैंसर होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे पदार्थों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। पतंजलि, योग परंपरा में महर्षि पतंजलि का नाम बहुत श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। इन्हें योग का पिता भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग का पथ कोई मत, धर्म, पथ या संप्रदाय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। योग परंपरा बहुत पुरानी है, जिसका जिक्र महाभारत के युग से सुनते चले आ रहे हैं। योग विचलित व भटके हुए मन को केंद्रण या फोकस प्रदान करता है, साथ ही विचारों के संघर्ष अर्थात मानसिक उतार चढ़ाव की समाप्ति करता है। योग हमें कई प्रकार के गुणों को जीवन में उतारने में मदद करता है, जैसे संयम, सत्य, अहिंसा, स्वाध्याय, संतोष, अनुशासन, ध्यान, एकाग्रता, भावना नियंत्रण, समर्पण आदि, जिससे मानव शरीर में सकारात्मक ऊर्जा व सोच का संचार होता है, जो आज की व भावी पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की पीढ़ी में इन सभी गुणों का अभाव है। योग के इन सभी लाभों के कारण पतंजलि ने मनुष्यों को देने का निर्णय किया। योग द्वारा आज हम कई सारे असाध्य रोग पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। पतंजलि का एक चित्र आपकी किताब के पेज नंबर 178 पर दिया हुआ है। चित्र संख्या है 14.8। इस चित्र में महर्षि पतंजलि विराजमान है। इन्हें योग का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही योग के बारे में हमें बताया था। क्या आप जानते हैं योग के फायदे क्या हैं? योग हमें जीवन में कई गुणों को सिखाता है, जैसे योग हमें संयम सिखाता है, सत्य अहिंसा सिखाता है, स्वाध्याय सिखाता है, संतोष, अनुशासन, ध्यान, एकाग्रता, भावना नियंत्रण और समर्पण आदि जैसे कई गुण हम योग से सीख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, किताब को देखिए। योग का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इंग्लिश में इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन हेल्थ। आज तनाव से भरी जिंदगी में योग जीवनदायिनी अमृत की तरह उभर कर आया है। योग के मुख्यतः दो पहलू हैं, एक शारीरिक योग, दूसरा आध्यात्मिक, दार्शनिक, भावनात्मक। शरीर की स्वस्थता से लेकर समाधि की सिद्धि तक योग की यात्रा बहुत ही सरल, सहज, वैज्ञानिक, प्रामाणिक, व्यवहारिक व सार्वभौमिक है। जीवन के तीन मूल तत्व माने जाते हैं, विचार, भावनाएं एवं क्रियाएं। योग करने से व्यक्ति के जीवन में ये मूल तत्व तथा कई मूलभूत परिवर्तन या रूपांतरण आते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। योग करने वाला व्यक्ति सात्विक व अहिंसक प्रवृत्ति से युक्त होता है, अर्थात राजसिक, तामसिक व हिंसक समृद्धि में विश्वास नहीं रखता है। योग व्यक्ति व समष्टि में संतुलन बनाए रखता है। योग से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक व विवेकपूर्ण विचारधाराओं का प्रवाह करता है। योग एक गुढ़, अत्यंत उपयोगी व व्यावहारिक विषय है। यह रूपांतरण का विज्ञान है, अर्थात साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। योग केवल साधु, संतों व ऋषि मुनियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह व्यापारी, किसान, नौकरी पेशा व्यक्ति, मजदूर एवं विद्यार्थी हो, सभी के उत्कृष्ट देन है। योग एक अत्यंत प्राचीन भारतीय जीवन शैली है। योग शिक्षा से शरीर निरोग और चुस्त बनता है तथा योग द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। दुनिया के अधिकतर देशों ने योग के महत्व को समझा है और अब हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की है। यहाँ पर हमने योग का स्वास्थ्य पर प्रभाव को पढ़ा। यहाँ पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि योग करने वाला व्यक्ति हमेशा सामाजिक रूप से कल्याण करने वाला होता है और जो व्यक्ति योग नहीं करता है उसके लिए सामान्य रूप से जो जिंदगी उसे प्राप्त होती है वह भी कठिन हो जाती है। वह अनेक प्रकार के राजसिक, तामसिक व हिंसक प्रवृत्ति से समृद्ध होता है तथा वह व्यक्ति जो योग करता है वह सात्विक तथा अहिंसक प्रवृत्ति से युक्त होता है। योग करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक व विवेकपूर्ण विचारधाराओं का निर्माण होता है और ऐसी विचारधाराएं हमें समाज में एक समृद्ध तथा सम्माननीय व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण बताए, जिन्हें हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग निम्न है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यम अर्थात सामाजिक अनुशासन। यम अष्टांग योग का प्रथम तत्व है। इसे अपनाने से इंद्रियों एवं मन को हिंसादि जैसे अशुभ भाव से हटाकर आत्म केंद्रित किया जाता है, इसे यम कहते हैं। दूसरा नियम, व्यक्तिगत अनुशासन। नियम द्वारा व्यक्ति जीवन में अनुशासन का तौर तरीका सीखता है और इसे अपनाने से व्यक्ति के अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तीसरा आसन, किसी भी आसन में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। चौथा प्राणायाम, सांस का नियंत्रण एवं नियमन। शरीर में रहने वाली आवश्यक शक्ति को उत्प्रेरित, नियमित व संतुलित बनाना ही प्राणायाम का उद्देश्य है। पांचवा प्रत्याहार, इंद्रियों पर अनुशासन। बाह्य वातावरण से विमुख होकर मन और इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार के द्वारा ही साधक का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। छठा धारणा अर्थात एकाग्रता। नाभिकीय, हृदय पुंडरिक, भूमध्य, वहारंध, नासिकांग आदि शारीरिक प्रदेशों में से किसी एक स्थान पर मन का निग्रह या एकाग्र होना धारणा कहलाता है। प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रियां एवं मन अंतर्मुख होने लगे तब उनको किसी स्थान विशेष पर स्थिर करने का नाम ही धारणा है। सातवां ध्यान अर्थात साधना। जब व्यक्ति समय और सीमा के बंधन से मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करता है तब वह ध्यान या साधना कहलाता है। आठवां समाधि मतलब कि आत्म अनुभूति। इसमें व्यक्ति की पहचान आंतरिक और बाह्य रूप से ध्यान में खो जाती है। सुख, दुख या दरिद्रता से मुक्त होकर सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान की पराकाष्ठा समाधि है। ये 8 जो अष्टांग योग है इनके बारे में हमने पढ़ा और वो किस प्रकार से हमें आनंद और किस प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं इसे भी पढ़ा। अब हम योग के द्वारा स्वास्थ्य पर प्रभाव को पढ़ते हैं। पहला, योग के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह निरंतर बना रहता है, जिससे आज की होने वाली कई रोग जैसे गठिया, सूजन, प्लेटलेट्स की कमी आदि को सही करने में मददगार होता है। दूसरा, योग से व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में विकास होता है। तीसरा, योग से व्यक्ति के अंतर मन के अवसाद खत्म होते हैं, जिससे आपराधिक मानसिकता में कमी होने लगती है। चौथा, नियमित रूप से योग करने से वृद्धावस्था में भी शारीरिक संतुलन बना रहता है। पांचवा, योग करने से बालकों में स्वाध्याय, सहजता, व्यवहारिकता, भावनात्मकता, दृढ़ निश्चयता व एकाग्रता आदि गुण विकसित होते हैं। योग या प्राणायाम तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को शांत करता है, जिससे आज की तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा मिलता है। साथ योग से प्रतिरक्षा तंत्र की प्रणाली की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर रोगों से बेहतर तरह से लड़ सकता है। आठवां, योग के द्वारा व्यक्ति को सही कार्य करने का मार्गदर्शन मिलता है, जिससे सकारात्मक स्वास्थ्य का बढ़ावा मिलता है। नौ, योग और ध्यान के द्वारा व्यक्ति में जागरूकता का निर्माण होता है, जिससे आज के प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण में बालकों का क्रोध विनाशकारी भावनाओं से मुक्त होता है तथा उन्हें सुविचारित दृष्टिकोण मिलता है। 10. योग द्वारा प्राप्त स्वस्थ शरीर से व्यक्ति में कर्मयोग की भावना जागृत होती है, जिससे वह दूसरों व देश की सेवा करने में इच्छा रखता है। 11. योग द्वारा शरीर के भीतरी अंगों के पर्याप्त व्यायाम होते हैं। योग करने से व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य व दीर्घायु प्राप्त करता है। 12. योग से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 13. शरीर अधिक लचीला बनता है। 14. मन को शांत करने तथा इंद्रियों को काबू करने के लिए योगासन शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास करता है। 15. विभिन्न योगासनों द्वारा रक्त शुद्ध होता है। 16. योग अहिंसक गतिविधि है, इससे व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। 17. योग शरीर की ग्रंथियों को उत्कृष्ट करता है, जिससे शरीर का संतुलित विकास होता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि योग द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास व आजीवन निरोग रहता है। इस प्रकार से हमने योग का स्वास्थ्य पर प्रभाव को पढ़ा। इतने प्रभाव पढ़ने के बाद जो योग हमें इतना ज्यादा लाभ पहुंचाता हो, क्या हम अपने प्रत्येक दिन में से कुछ समय योग को नहीं दे सकते? हम कोई भी काम करें, अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या हम अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे? हमें अपने जीवन का आनंद लेने के लिए, पूर्ण रूप से खुश होने के लिए हमें योग करना ही चाहिए। आप भी निश्चय कीजिए कि प्रतिदिन आधे घंटे या एक घंटे योग जरूर करेंगे। ऐसा करके आप स्वस्थ भी रहेंगे तथा अपनी पढ़ाई और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अष्टांग योग के लिए चित्र 14.9 में विभिन्न प्रकार के योगासनों को दिखाया गया है। आप इन सब योगासनों की सूची बनाएं। इनके बारे में और जानकारी अपने शिक्षक तथा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करें और अपने प्रतिदिन के जीवन में इन्हें शामिल करें। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मानसिक तनाव घटेगा और सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं नागार्जुन का जीवन परिचय, लाइफ हिस्ट्री ऑफ नागार्जुन। नागार्जुन कौन है? क्या आपने इनके बारे में पहले कभी सुना है? आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। नागार्जुन प्राचीन भारत के रसायन शास्त्र के एक प्रख्यात विद्वान थे। उनका जन्म सोमनाथ के निकट गुजरात में दहक नामक जिले में हुआ। उनका समय 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। यही समय आयुर्वेद धातुवाद का है। नागार्जुन एक रसायनज्ञ अर्थात किमियागर थे। नागार्जुन द्वारा लिखित ग्रंथ रस रत्नाकर एवं रसेंद्र मंगल अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। रस रत्नाकर में धातुओं के संशोधन और उनके गुण दोषों का निरूपण है, जिसमें पारे का उल्लेख सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लिखित रासायनिक क्रियाएं आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल देती हैं। इसमें रस पारे के यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं एवं देश में धातु कर्म और किमियागरी के स्तर का सर्वेक्षण भी दिया गया है। इस ग्रंथ में चांदी, सोना, टिन आदि धातुओं को शुद्ध करने के तरीकों का वर्णन भी किया गया है। पारे से संजीवनी एवं अन्य पदार्थ बनाने के लिए नागार्जुन ने पशुओं, वनस्पति तत्वों, अम्ल एवं खनिजों का भी इस्तेमाल किया। कई धातुओं को घोलने के लिए उन्होंने वनस्पति से निर्मित तेजाबों का भी सुझाव दिया। बहुत से वैज्ञानिकों ने नागार्जुन के ग्रंथों से रसायन विज्ञान का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक में कई महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया, जैसे आसवन, इंग्लिश में इसे डिस्टिलेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, द्रवण जिसे इंग्लिश में लिक्विफैक्शन कहते हैं आदि। ये सभी प्रक्रियाएं आज रसायन विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कई धातुओं से सोना, सोने के समान पीली चमक वाली धातुओं को बनाने की विधियों का वर्णन भी नागार्जुन ने अपनी पुस्तक में किया है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नागार्जुन को विभिन्न वस्तुओं के रासायनिक गुणों का अद्भुत ज्ञान था। किमियागरी से ही आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्म हुआ, इसलिए भारत में नागार्जुन को धातुवाद का प्रवर्तक माना गया है। नागार्जुन ने पारे की भस्म तैयार करने की विधि का भी वर्णन किया एवं इस विधि द्वारा पारे के प्रयोग से शरीर दीर्घकाल तक निरोग रह सकता है। नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक का संपादन किया तथा सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र नामक नया अध्याय जोड़ा। इसमें औषधियां बनाने के तरीके दिए गए हैं। नागार्जुन ने आयुर्वेद की आरोग्य मंजरी, योगसार, युवाष्टक आदि ग्रंथों की भी रचना की। एक अनुभवी रसायन शास्त्री होने के कारण कई वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों में उनके ज्ञान का सहारा लिया। तो इस प्रकार से हमने नागार्जुन के बारे में पढ़ा, वह रसायन शास्त्र में कितने विद्वान थे हमें यहाँ पता चलता है। उनके द्वारा किए गए जो खोज हैं, जो रचनाएं हैं उनकी, वह आज भी हमारे वैज्ञानिकों के बीच प्रासंगिक हैं और उनसे ज्ञान हम हासिल करते रहते हैं। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ेंगे। मेरे साथ आप भी अपने किताब के पेज नंबर 181 को देखिए। पहला, संतुलित आहार वह है जिसमें समस्त पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल तथा खनिज लवण उचित मात्रा में विद्यमान हो। दूसरा, फास्ट फूड व सिंथेटिक पेय पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं एवं धीरे धीरे गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तीसरा, कुपोषण से अभिप्राय संतुलित आहार न मिलने से है। आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को कुपोषण या हिंताजन्य रोग कहते हैं। चार, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर व मैरेस्मस रोग हो जाते हैं। पाँच, कैल्शियम की कमी से हड्डियों, पेशियों में दर्द एवं ऐंठन जैसे लक्षण दिखते हैं जिसके कारण बार बार फ्रैक्चर की शिकायत रहती है। छठा, आयोडीन की कमी से गलत गंड या घेंघा रोग हो जाता है। सात, विटामिन बी की कमी से बैरी बैरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आठ, जो रोग विभिन्न जीवित कारक जैसे जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है तो इसे संक्रामक रोग कहते हैं, उदाहरण एड्स, पीलिया, क्षय रोग आदि। नौ, एड्स बीमारी एचआईवी वायरस द्वारा फैलती है। दस, रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। यह केवल रोगी तक सीमित रहने वाला रोग है, उदाहरण मधुमेह व कैंसर आदि। 11, योग से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में विकास होता है। 12, महर्षि पतंजलि को योग के पिता कहा जाता है। 13, नागार्जुन प्राचीन भारत के रसायन शास्त्र के प्रख्यात विद्वान थे। 14, नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक का संपादन किया तथा सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र नामक नया अध्याय जोड़ा। अब हम अभ्यासार्थ प्रश्न करेंगे। पहला, बहुचयनात्मक प्रश्न। पहला, क्वाशियोरकोर रोग किस भोजन अवयव की कमी से होने वाला रोग है? इसका सही उत्तर है ब, प्रोटीन। दूसरा, निम्न में से जन्मजात रोग नहीं है? इसका सही उत्तर है य, कोई नहीं। कुष्ठ रोग, टिटनेस, मलेरिया, चिकन पॉक्स या कोई भी रोग जन्मजात नहीं है। तीसरा, भोजन का वह घटक जिसको ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है? इसका सही उत्तर है ब, कार्बोहाइड्रेट। चौथा प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है? यहां पर रिकेट्स ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए सही उत्तर है य, कोई नहीं। हमने पढ़ा है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। पांचवा, एड्स रोग का प्रसार नहीं होता है? इसका सही उत्तर है स, स्पर्श द्वारा। प्रश्न संख्या छह, योग द्वारा व्यक्ति में कौन सा लक्षण निर्मित होता है? स्वाध्याय, अनुशासन, सकारात्मक दृष्टिकोण, यह सभी योग द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है द, उपरोक्त सभी। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हल करेंगे। सातवां प्रश्न, संतुलित भोजन के घटक व प्रमुख स्रोत क्या है? इसके बारे में हमने चर्चा किया है, इसके बारे में आप अपने किताब की पेज 170 पर देखिए। सारणी एक को पढ़ते वक्त मैंने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन यह सब किन खाद्य पदार्थ में मिलते हैं यह भी आपको बताया है। आठवां प्रश्न, शरीर के लिए आवश्यक विटामिन के नाम बताइए। यह सब सारणी दो में हमने पढ़ा है और उन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है यह भी पढ़ा है। नौवां प्रश्न, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। दसवां प्रश्न, वायरस जनित किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। इसके बारे में हमने पढ़ा है जब हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ रहे थे। ग्यारहवां प्रश्न, डेंगू रोग के लक्षण व उपचार क्या है? डेंगू के बारे में हमने अच्छी जानकारी हासिल की है, आप अपने किताब के पेज 176 को देखिए। अब लघुतरात्मक प्रश्न, बारहवां प्रश्न, फास्ट फूड से शरीर पर होने वाले प्रभाव को समझाइए। फास्ट फूड से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है इस पर भी हमने चर्चा किया है। मैंने आपको बताया है कि फास्ट फूड में जो भी पदार्थ होते हैं वह संतुलित नहीं होते हैं। कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा होता है जैसे नमक, वह फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। कोई भी पदार्थ अगर हम संतुलित रूप में लें तो हमारे लिए हमेशा अच्छा होगा, और कोई भी पदार्थ जो बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो वह हमारे लिए हानिकारक होता है। तेरहवां प्रश्न, कुपोषण किसे कहते हैं? इसके कारण व इससे होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम दीजिए। इस पर भी हमने विशेष रूप से चर्चा किया है। मैंने आपको बताया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उन्हीं पोषक तत्वों में से कोई एक कुछ ज़्यादा मिल जाए या उसकी कमी हो जाए तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मैंने इसके कारण के बारे में भी आपको बताया है, जैसे गरीबी, अज्ञानता, चिंता, इन सब चीज़ों की हमने चर्चा की है। आप इसके बारे में अपने किताब के पेज नंबर 173 पर देखिए। प्रश्न संख्या 14, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? खनिज लवण की संतुलित भोजन में क्या भूमिका है तथा इसकी कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। हमने इसके बारे में भी चर्चा किया है। अब निबंधात्मक प्रश्न दिए हैं जिसे आप स्वयं व अपने शिक्षक की सहायता से हल करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को भी पूरी तरह से पढ़ लिया है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उन्हें भी हल करने की कोशिश की है। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं स्वप्निल विवेक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।